ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल कृषि मिशन समेत किसानों से जुड़ी 14,000 करोड़ रुपए की 7 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत की। कहा, भाजपा संविधान से चलने वाला एकमात्र राजनीतिक दल। पेरिस पैरालंपिक के बैडमिंटन में नीतीश कुमार ने भारत को दिलाया स्वर्ण पदक। योगेश कथुनिया को डिस्कस थ्रो में मिला रजत पदक। और प्रदेश में मॉनसून के कमजोर पड़ने से बारिश की गतिविधियों में आई कमी। अगले 2 दिनों तक कहीं भी भारी बारिश की नहीं है संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल कृषि मिशन समेत किसानों से जुड़ी 14,000 करोड़ रुपए की 7 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि डिजिटल कृषि मिशन पर 2,817 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो डीपीआई का स्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसमें 2 फाउंडेशनल पिलर्स रहेंगे। एक रहेगा एग्री स्टैक, दूसरा रहेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टैक में सारा बेसिक डेटा, किसानों का डेटा, जमीन का डेटा, क्रॉप का डेटा, ये सब रहेगा। और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में वाटर की अवेलेबिलिटी, प्लानिंग के लिए जो चाहिए इनपुट्स वो सब, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी, वेदर रिलेटेड डेटा, सैटेलाइट से जो आता है डेटा, वो कई तरह के जो किसानों को फैसले लेने के टाइम में जो काम में आती है जरूरत, जो इन्फॉर्मेशन और साइंटिफिक प्रैक्टिसेस चाहिए होती है, वो सारे कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में रहेंगे।
श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 3,979 करोड़ रूपये की लागत वाली योजना को मंजूरी दी है।
क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप साइंसेज और फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर 2047, उसको ध्यान में रखते हुए 6 पिलर्स इसमें रखे गए। इस प्रोग्राम में ये 3,979 करोड़ रुपीज का प्रोग्राम है, 3,979 करोड़ रुपीज का प्रोग्राम है। जो कंप्लीट फूड का, एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम है, उसको कैसे सुदृढ़ करा जाए, ये इस पूरे प्रोग्राम का 6 पिलर्स है।
सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि सरकार ने 2,291 करोड़ रुपए की लागत से कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने का भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में 1,702 करोड़ रुपए की लागत से पशुधन स्वास्थ्य और उनकी जनसंख्या बढ़ाने की योजना को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा 860 करोड़ रुपए की लागत से बागवानी के सतत विकास कार्यक्रम को अनुमति दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक में 1,202 करोड़ रुपए की लागत से कृषि विज्ञान केंद्रों और 1,115 करोड़ रुपए की लागत से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को भी मजबूत करने का फैसला किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत की। पार्टी मुख्यालय में श्री मोदी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से अपनी सदस्यता का नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि किसी भी संगठन में आंतरिक लोकतंत्र बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा एकमात्र पार्टी है जो संविधान से चलती है। श्री मोदी ने कहा कि जनसंघ से लेकर अब तक पार्टी ने देश में नई संस्कृति लाने का प्रयास किया है।
भारतीय जनसंघ से लेकर के अब तक हमने देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति लाने का भरसक प्रयास किया है। जब तक जिस संगठन के माध्यम से या जिस राजनीतिक दल के माध्यम से देश की जनता सत्ता सुपुर्द करती है, वो इकाई, वो संगठन, वो दल अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं जीता है, आंतरिक लोकतंत्र निरंतर उसमें पनपता नहीं है, तो वैसी स्थिति बनती है जो आज देश के कई दलों की हम देख रहे हैं।
इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और देश के राजनीतिक दलों में भाजपा ही केवल एक तय समय पर सदस्यता नवीकरण अभियान चलाती है।
हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, मगर पूरे राजनीतिक दलों में एक प्रकार से अनूठी पार्टी, क्योंकि कोई राजनीतिक दल आज भारत के राजनीतिक मानचित्र में देखे तो 1500 से ज्यादा राजनीतिक दलों में कोई राजनीतिक दल लोकतांत्रिक तरीके से, विश्वास के साथ, खुलेपन के साथ, सातत्यपूर्ण तरीके से हर 6 साल में अपनी सदस्यता अभियान को नहीं करता।
समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज से पार्टी का नया दौर शुरू हुआ है। पार्टी संविधान के अनुसार आगे बढ़ते हुए देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 51 दिनों तक चलने वाला यह अभियान नए सदस्य बनाने और पार्टी के मौजूदा सदस्यों के नवीनीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा।
ये अभियान आज से 10 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाएगा। सदस्यता अभियान का पहला चरण इस महीने की 25 तारीख को संपन्न होगा। भाजपा का चुनाव वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर पूरे देश में अपने सदस्यता अभियान के हिस्से के रूप में कम से कम 10 करोड़ नए सदस्यों की भर्ती करने का लक्ष्य है। दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
इधर प्रदेश भाजपा कल से सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी। इस अभियान के तहत राज्य में 1,54,00,000 से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य है। बिहार में 1 अक्टूबर से सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। 9 से 14 आयु वर्ग की 1 करोड़ से अधिक बच्चियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन देने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि 6 माह के अंतराल पर टीके के 2 डोज लगाए जाएंगे। इस टीकाकरण कार्यक्रम पर प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। पेरिस पैरालंपिक में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नितेश कुमार ने पुरुष सिंगल्स के SL3 श्रेणी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में उन्होंने ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले योगेश कथुनिया ने आज पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में रजत पदक जीता। अपने पहले ही प्रयास में 42.22 मीटर की दूरी तक चक्का फेंक कर उन्होंने सीजन में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ लगातार दूसरा पैरालंपिक रजत पदक जीता है। भारत ने पेरिस पैरालंपिक में अब तक 2 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य समेत कुल 9 पदक जीते हैं। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह कमजोर हो गया है। इससे बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है।
बिहार में पूर्वी हवा लगातार चलती रहेगी, नमी वाली हवा तो आती रहेगी, बादल रहेंगे। जब हवा एवं बादल रहेंगे तो मौसम ठीक लगेगा, नहीं तो उमस वाली गर्मी परेशान करेगी, क्योंकि अभी बारिश बहुत ज्यादा नहीं होगी। आज से अगले 48 घंटों के दौरान हल्की वर्षा का ही पूर्वानुमान है।
राज्य से होकर गुजरने वाली अधिकांश नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 34 सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है। हालांकि नदी के जलस्तर में कमी की प्रवृत्ति बनी हुई है। वहीं पटना के हाथीदह में नदी का जलस्तर लाल निशान से 58 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। भागलपुर के कहलगांव में भी गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इधर सोन नदी के जलस्तर में कमी आई है। पटना के मनेर में नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा है। घाघरा नदी के जलस्तर में भी कमी दर्ज की गई है। दूसरी तरफ खगड़िया में बूढ़ी गंडक नदी अभी भी लाल निशान से 91 सेंटीमीटर ऊपर बनी हुई है। वहीं बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में बढ़ रहा है। नदी लाल निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बनी हुई है। इधर कोसी नदी का जलस्तर कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान से 67 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि खगड़िया, कटिहार और भागलपुर समेत राज्य के अन्य बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। निचले इलाकों से बाढ़ का पानी निकल गया है, वहीं ऊंचे स्थानों से भी पानी धीरे धीरे निकल रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक रोगों के रोकथाम को लेकर प्रशासन की ओर से ब्लीचिंग पाउडर और एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के रायनपाडु स्टेशन पर पानी के तेज बहाव के कारण पूर्व मध्य रेलवे ने दानापुर से बेंगलुरु के बीच चलने वाली संघमित्रा एक्सप्रेस को आज रद्द कर दिया है। वहीं 4 सितंबर को दानापुर से खुलने वाली दानापुर बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन भी रद्द रहेगी। इसके अलावा आज बेंगलुरु से खुलने वाली संघमित्रा एक्सप्रेस और बेंगलुरु दानापुर एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है। सतलुज जल विद्युत लिमिटेड SJVN को केंद्र सरकार ने नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। SJVN चौसा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कंपनी के 36 वर्षों की यात्रा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राज्य सरकार ने उर्वरक से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। किसान उर्वरक से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत होने पर टेलीफोन नंबर 06122233555 पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा fertilizer.bihar@gmail.com पर भी मेल किया जा सकता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की 102वीं जयंती पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पटना में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने दारोगा प्रसाद राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत मैगनी बीघा गांव में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खोखाचक गांव में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष फंटुष कुमार सिंह के रूप में हुई है। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र से पुलिस ने 10 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल कृषि मिशन समेत किसानों से जुड़ी 14,000 करोड़ रुपए की 7 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत की। कहा, भाजपा संविधान से चलने वाला एकमात्र राजनीतिक दल। पेरिस पैरालंपिक के बैडमिंटन में नीतीश कुमार ने भारत को दिलाया स्वर्ण पदक। योगेश कथुनिया को डिस्कस थ्रो में मिला रजत पदक। और प्रदेश में मॉनसून के कमजोर पड़ने से बारिश की गतिविधियों में आई कमी। अगले 2 दिनों तक कहीं भी भारी बारिश की नहीं है संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। Thank you.